पंडित बाबूराव विष्णु पराड़कर, पृष्ठ संख्या 111। यह चर्चा सन 1920 और 21 ईस्वी के बीच की होगी। यह सब मैं स्मरण से लिख रहा हूँ क्योंकि डायरी रखने की आदत मैंने नहीं पाली, इस खौफ से कि कहीं राजा हरिश्चंद्र की तरह अपना ही सत्य या तेज अपने ही को भस्म न कर डाले। यह चर्चा तब की है जब ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उपवास करके आयरलैंड के महात्म्य महस्विनी शहीद हुए थे। उन दिनों देश में राष्ट्रीयता की लहर तेज प्रवाहित हो रही थी, जिसमें मेरे भी प्राण प्रसन्न डुबकियां लगाने को लालायित रहते थे। मैंने शहीद मैकस्विनी पर एक लंबी कविता लिखी। वह हिंदू स्कूल के तेजस्वी हिंदी अध्यापक पंडित सवली जी नागर को मैंने सुनाई। सुनते ही वह प्रसन्न हो उठे, बोले, चलो ज्ञान मंडल, पराड़कर जी से कहूँगा कि वह यह कविता आज में छापें। उन दिनों ज्ञान मंडल भाड़े के बंगले में दुर्गा कुंड मोहल्ले में था। शिष्य वत्सल बेचारे नागराज जी पक्के मोहल्ले से पैदल प्रायः एक कोस चलकर मुझे ज्ञान मंडल ले गए। वहाँ पहुँचने पर मुझको दरवाजे ही पर रुकने का संकेत कर वह अंदर गए, जहाँ उस समय शिवप्रसाद जी गुप्त और श्री प्रकाश जी बैठे हुए थे। नागर जी का उत्तम शिक्षक के नाते काशी में आदर था, अच्छे अच्छे जानते मानते थे। ज्ञान मंडल का श्रेष्ठी वर्ग भी उनका सम्मान करता था। उन्होंने गुप्त जी और श्री प्रकाश जी को सम्मिलित संबोधित करते हुए कहा, श्रीमान जी, मेरा एक शिष्य एक कविता लेकर आया है, सामयिक है, कहिए तो उसे अंदर बुलाऊं। और अविलंब मैं बाबू शिव प्रसाद गुप्त और बैरिस्टर श्री प्रकाश जी के सामने उपस्थित हुआ। नागराज जी ने कहा, सुनाओ अपनी कविता पढ़कर। मेरा दिल धड़क रहा था। साहस बटोर कर काशी के उन दिग्गज श्रीमानों को मैंने अपनी कविता सुना ही दी और रंग जम गया। गुप्त जी भी प्रसन्न हुए, प्रकाश जी भी। गुप्त जी ने मैनेजर से पूछा, क्या सवेरे निकलने वाले आज में इतनी बड़ी कविता के लिए स्थान निकल सकता है? पूछो फोरमैन से। फोरमैन ने बतलाया कि सातवें पृष्ठ के अंतिम कालम में चाहें तो कविता दी जा सकती है। आज में वह मेरी पहली कविता छपी थी। इस वाकया के कुछ ही दिनों बाद मैंने पहली कहानी लिखी, गांधी आश्रम की, आज में ही छपे। आज के एक सहकारी संपादक श्री हरिनाथ जी बीए थे, बड़े ही सरल चित्त कायस्थ। उन्होंने पढ़ने के बाद वादा किया कि कहानी पेपर में छपाने का उद्योग करेंगे। पूछना था श्री प्रकाश जी से, मैं बैठा प्रतीक्षा करता रहा। श्री प्रकाश जी आए रात के 8:30 बजे। उन्हें देखते ही उनके रौब के मारे मैं उनकी कुर्सी को ठीक पीछे वाले कोठरी में दुबक रहा। मौक पाते ही हरिनाथ जी ने मेरी कहानी श्री प्रकाश जी की सरकार में पेश कर दी। क्या है यह? पूछा उन्होंने। एक कहानी है। किसकी लिखी हुई है यह? उसी लड़के की जिसकी कविता मैकस्विनी पर आपने छापी थी। लड़के की कहानी? लड़कों की रचनाओं के लिए आज नहीं है, कहकर उन्होंने कहानी बिना पढ़े ही अस्वीकृत कर दी। उनका निर्णय सुन उनके पीछे पीछे मैं सुन रह गया। लेकिन जय हो मुंशी हरिनाथ की, उन्होंने वह कहानी मुझे लौटाई नहीं, बल्कि पंडित बाबूराव विष्णु पराड़कर के सामने उसे रख दिया। पराड़कर जी ने रचना पढ़ी, आवश्यक सुधार किए, छपने को दे दी। छपने के बाद मुझे पता चला कि मेरा दिल टूटे नहीं। इसके लिए हरिनाथ जी ने क्या उपाय किया था? वह कहानी पांडे बेचन शर्मा उग्र के नाम से नहीं, मेरे एक अन्य शशिमोहन शर्मा नाम से छापी थी। तब तक मैंने उग्र उपनाम नहीं रखा था। उग्र उपनाम तो मैंने राष्ट्रीय गान द्वंद्व में सम्मिलित होने से पूर्व चुना था। आज मुझे अपने लिए उपनाम चुनना हो तो संभव है, बुरा न होने पर भी उग्र मैं न चुनूं। लेकिन आज से 40 वर्ष पूर्व राष्ट्रभक्त लेखक ऐसे कर्कश उपनाम इसलिए चुना करते थे कि बलवान ब्रिटिश साम्राज्य के नृशंस शासक नाम ही से दहल जाएं। शायद शक्तिहीनता छिपाने के लिए लोग प्रचंड नाम लोप लुप्ता चुना करते थे, जैसे त्रिशूल, व्रजपाणी, धूमकेतु, भीष्म, भीम, भयंकर, प्रलयंकर या अपना 2.5 अक्षर का उग्र। क्या हुआ कि पंडित पराड़कर जी मेरी लेखनी की तरफ आकर्षित हुए, मुझे पता नहीं। वह रूखे दिखने वाले महापुरुष थे, प्रायः चुप रहने वाले। मेरी लेखनी में अंग्रेजी राज के प्रति घोर घृणा तथा क्रांतिकारियों के लिए तरल महामोह था, मैं समझता हूँ। उसी पर वह मुक्त प्राण महाराष्ट्रीय मोहित हुए होंगे। उन्होंने बेबोले ही मानो मुझे गोद ले लिया। सारे ज्ञान मंडल की कानाफूसी एक तरफ रख अपना काम छोड़ घंटों तक वह मेरी कहानियों को व्याकरण की पटरी पर लाते, गलत बयानियां सुधारते, बदशक्ल शब्द या मुहावरे काट छांट सुंदरता संवार कर वह मेरी शुद्र रचनाओं को दिव्य द्विजत्व दिया करते थे। जब वह मेरी कहानी पढ़ते पढ़ते हंसने लगते अथवा सजल हो उठते, तब मुझ में बिना बोले ही आत्मविश्वास घट घट उड़ेल देते थे। अक्सर मैं घोर राज विद्रोह लिखा करता था, जिससे पढ़ते ही अस्वीकृति से माथा हिलाते वह कहते, नहीं नहीं आपने लिखा सुंदर है, सच है, पर कानून लोचदार है, संस्था श्रीमानों की है। इस तरह आप सबको संकट में डाल देंगे। फिर पराड़कर जी उस रचना रूपी बिच्छू को सुधारते, यूं कि बिच्छू का रूप तो बदल जाता लेकिन शब्दों के मायाजाल में मार कर डंक और विष बना का बना ही रहता। अक्सर मेरी रचनाओं की क्रांतिकारी उग्रता से चमक कर श्रीमान लोग सावधान करते पराड़कर जी को कि कहीं उग्र की लेखनी संस्था को खड्डे में न खींच ले जाए। फिर भी पराड़कर जी छापते। यह द्वंद्व तब तक चलता रहा 4-5 वर्षों तक, जब तक पराड़कर जी की कृपा से रचनाकार की हैसियत से मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो गया। इस अरसे में उत्तर प्रदेश का यह जो भारत प्रसिद्ध दैनिक अखबार आज है, मेरे अभ्यास का पूर्ण साधन बना रहा। इसके प्रमाणों से आज की फाइल भरी हुई है। मेरी लिखी पहली समालोचना मर्यादा मासिक में इन्हीं दिनों छपी थी, जिसके संपादक थे श्रद्धेय संपूर्णानंद जी। गर्वीले संपूर्णानंद जी के ज्ञान विज्ञान चर्वीले चश्मों में मेरी लेखनी के लिए स्नेह पर्याप्त था। मैं कहानी, कविता, हास्य, आक्रमण जो भी लिखता था वह पराड़कर जी के प्रसाद से तुरंत ही पब्लिक के सामने आ जाता था। ऊटपटांग शीर्षक से बरसों मैंने हास्य व्यंग के नोट्स आज में लिखे हैं, अष्टावक्र उपनाम से। इस लिखने लिखाने की मजदूरी मुझे शुरू में 10 आने कालम के हिसाब से मिलती थी, वह भी इस शर्त के साथ कि 3 रुपये मासिक से अधिक कालम का मैं न लिखूं। सौभाग्य का तेवर तो देखिए, बाल अभ्यास के लिए 5 लाख का प्रतिष्ठित दैनिक पत्र बाबा के माल की तरह अपना, पर जेब खर्च के लिए ₹30 मासिक से अधिक की गुंजाइश नहीं। लेकिन आज की वजह से मेरी वह प्रचंड पब्लिसिटी हुई, नगर में, प्रदेश में, हिंदी हद तक सारे देश में, कि ज्ञान मंडल के वरदानों को मैं चांदी के बटखरों से क्यों तोलूं। आपने पढ़ लिया कि मैं शिव प्रसाद जी गुप्त के सेवा उपवन से भीख के अन्न सिर पर लाद कर ले आता था। ज्ञान मंडल और आज भी उन्हीं देवता स्वरूप शिव प्रसाद के दिव्य प्रसाद थे, हैं भी। लेकिन शिव प्रसाद जी मुझे आज में उस ओज से न लिखने देते जिस तेज की महाराज पराड़कर ने सुविधा दे रखी थी। मौलिकता न हो न सही, पाठकों की नीरसता भंग करने के लिए तब के आज के प्रकाशित 2-4 कविताएं महज स्मरण से ही यहाँ उपस्थित करता हूँ। परतंत्र, प्रभु परतंत्र हैं हम आज, दलित हैं परपद प्रबल से गलित हैं सब साज, प्रभु परतंत्र हैं हम आज। देश पर, निज वेश पर, सर्वेश पर का राज, पर कृपा निर्भर स्वपूजा ध्यान और नमाज, प्रभु परतंत्र हैं हम आज। पर उदर निज अन्न से भर हम रहे मुहताज, पर कुशल निज आप कुशल हित देव विधि खिराज, प्रभु परतंत्र हैं हम आज। अपर पर बस जग न हम सम दास गण सिर ताज, प्रभु परतंत्र हैं हम आज। सन 1920-21 ईस्वी। कामना, भयंकर ज्वालाएं जाग उठे सब ओर आग ही, हो जाए भरमार मधुर रागनी नहीं चाहते और न स्वर सुकुमार, वज्रनाद सा बोल उठे हम सबके उर का तार, पावस की घनघोर घटाओं सी चारों ओर नभ में धुएं की राशि व्याप उठे और उसमें हो हमारी दिव्य आशाएं चंचला सी चमके अनंत चिंगारियां ऐसे समय ओ हो आहा हा उग्र रूप विश्वामित्र दुष्ट दल नाशक भृगु रावण दर्प हारी राम कुरु बलवन दावानल कर्म वीर कृष्ण ऐसा अथवा पिनाकी भूतनाथ श्री कृपाल भृत ऐसा वीर भारत हमारा उग्र नाच उठे एवं मस्तु। सन 1920 21 ईस्वी व्यंग मिस माधुरी को मुख लोफर निहारी हारी फीके पड़ गए मुंह नीके नीके गुल के वसन सफेद वा के तन की सफेदी देख मलिन बना ही रहा 60 बार धुल के चूल्हे पड़े जले काहूं काम के रहे न फिर देखी हलकाई वा की फूले फूले फूल के काऊ कीट बुल के हरिन चुलबुल के सुजात गड़ी पायन चरम बुलबुल के हास्य खेत खेत खाद खाए तप के तमाखू हुआ गया परदेश कहूँ कैसी बुद्धिमत्ता है विकट मशीन बीच पड़ उड़वाया लत्ता बना सिगरेट फिर लौटा कलकत्ता है हाट में बिकाए आया हाथ में उसी के फिर खाक भी हुआ तो होठ ही पे क्या महत्ता है सत्ता हुआ मिस पे बिचारा कभी लोफर भी बोल उठा विश्व यह प्रेम अलबत्ता है। पूज्य पराड़कर जी का बंगाल के बड़े बड़े बमबाज योगी मिजाज क्रांतिकारियों से संबंध था। दिल्ली के दफ्तर में यह जो साक्षात शहीद हैं गुप्त मन्मथ नाथ जी यह भी मेरे क्लास भाई हैं। हिंदू स्कूल के मन्मथ नाथ जी भी विद्यार्थी थे। प्रचंड और दार्शनिक षड्यंत्रकारियों से मेरा संपर्क भी कम नहीं था लेकिन पराड़कर जी या मन्मथ नाथ के सबब नहीं मेरी लेखनी से चिंगारियां झड़ते देख दिवंगत श्री सचिंद्र नाथ जी सन्याल और फांसी पा जाने वाले शहीद श्री राजेंद्र लाहिड़ी ने ललक कर मेरा संग्रह किया था। सती चंद्र बाबू ने राजेंद्र लाहिड़ी को मेरे घर भेजा मेरी उग्रता की गहराई को जांचने के लिए। मेरे स्वभाव में उत्सुकता भावुकता जितनी गंभीरता दृढ़ता उतनी नहीं थी। कलम से लिखकर रिस्क लेना हो तो कायर होते हुए भी शहीदों का पीछा मैं काले कोसों तक न छोड़ूं। कलम से मारना हो तो सारे विश्व के अनाचारियों को बिना नरक भेजे मैं न मानूं। लेकिन बंदूक तलवार से प्राण लेना हो तो वह मेरा शेवा नहीं। मेरी परिभाषा चाणक्य ने नंद साम्राज्य का नाश कर दिया लेकिन अपने हाथ से किसी को एक थप्पड़ भी लगाए बगैर और मुझे बुलाया गया 3 और बंगाली जवानों के साथ बनारस से इलाहाबाद सचमुच कई षड्यंत्रकारी उपद्रव राजनीतिक डाका डालने के लिए चला तो गया मैं बंगालियों के साथ बनारस से इलाहाबाद लेकिन वैसे ही जैसे काली मंदिर में नहलाए जाने के बाद बलि पशु यूप की तरफ जाता है इलाहाबाद में 24 घंटे इंतजार करने पर भी अन्य आदमियों के साथ जब योगेश बाबू नहीं आए तब एक प्रकार से जान बची लाखों पाए भाव से हम तीनों छोटी लाइन से पुनः बनारस लौटे लेकिन बीच के एक जंक्शन पर बनारस से आने वाली गाड़ी में आधा दर्जन तगड़े वीरों के साथ योगेश बाबू नजर आए। उन्होंने हमें अपने डिब्बे में बुलाकर इलाहाबाद लौट चलने का जब आदेश दिया तब बंदे खां बेशर्म बहाने बनाने लगे कि भाभी से 2 ही दिनों में लौट आने का वचन देकर आया हूँ। इस पर बहादुर योगेश बाबू ने जिस घृणा भरी दृष्टि से मेरी तरफ तरेर कर ताका था वह आज भी मुझे भूली नहीं है। दोनों बंगाली बहादुर इलाहाबाद लौट गए मैं बनारस बच आया। फिर भी श्री सचिंद्रनाथ सन्याल तथा क्रांतिकारी मंडल मेरा आदर करता था। सचिन बाबू ने तो अपने संस्मरण में एकाधिक बार मेरी चर्चा भी की है। वह मेरी लेखनी में जो आग थी उसी से परम संतुष्ट थे। मुझ में जो नहीं था उसके लिए तिरस्कार सन्याल महाशय के दर्शन में नहीं था। सन्याल बाबू दुखों के दाह से सुवर्ण की तरह दब दब दहकते दार्शनिक थे कसौटी की तरह श्याम बड़ी बड़ी झरीली करुण आँखें।